أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بہترین نماز کیسے پڑھیں؟ اس سلسلے کا درس نمبر 23. پچھلے درس میں جو کہ 22واں درس تھا، پوری نماز مکمل ہو چکی تھی، تعقیبات نماز سے بھی فارغ ہو گئے تھے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے نماز کے اختتام کے بعد، کہ نماز تو ہو گئی، نماز مسائل کے تحت صحیح بھی پڑھ لی گئی، اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس نماز کو قبول کیسے کروایا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، نماز کا پڑھ لینا ایک الگ مسئلہ ہے، اسے قبول کروانا یہ دوسرا مسئلہ ہے. یعنی صرف عمل انجام دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہ ہو جائے. اب دیکھیں، خواہ کتنا ہی عظیم ترین عمل کیوں نہ ہو، مثلا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور خواہ وہ بندہ جو اس نیک عمل کو انجام دے رہا ہے کتنا ہی نیک اور معصوم کیوں نہ ہو، جیسے ابراہیم و اسماعیل جیسے پیغمبر، تب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ عمل کرنے والا خواہ کتنا ہی معصوم نبی یا امام ہو، وہ بھی دعا مانگتا ہے کہ عمل قبول ہو جائے، اور خواہ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا نیک عمل کیوں نہ ہو. اور ایسا نہیں کہ سب تمام لوگوں کے سامنے جمع غفیر کو جمع کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، یہی دو افراد اس موقع پر موجود تھے. اچھا دیکھیے، تقبل میں کیفیت تکلف کی ہوتی ہے، یعنی پروردگارہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول کیا جا سکے، مگر تو بتکلف ہی قبول کر لے. تو یہ جو پیغام ہے اس آیت کا، ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا کی تھی، یہ پہلا طریقہ بن جائے گا نماز کی قبولیت کے لیے، کہ اس نماز کو قبول کروانے کے لیے آپ دعا کریں پروردگار سے اپنی نمازوں کے قنوت میں، ربنا تقبل منا والی دعا، یہ آپ نمازوں کے قنوت کے اندر ہمیشہ پڑھا کریں. نمازوں کو قبول کروانے کے لیے، جیسے کہ اس عمل کے لیے انہوں نے دعا کی، اس طرح میں نمازوں کو قبول کروانے کے لیے بھی اپنی نمازوں کے قنوت میں اور نمازوں کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. دیکھیے، اگر ایسا نہ کیا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان 50 سال کی اس کی عمر گزر جاتی ہے، تب بھی پروردگار نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہوتی. کتنا خطرناک معاملہ ہے. امام فرماتے ہیں 50-50 سال کی عمریں گزار لیتا ہے لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی. اچھا، ایک بات اس میں اور شروع ہی میں بتا دی جائے، وہ اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں بھی ہے اور نمازوں کی قبولیت کے سلسلے میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ خواہ نماز ہو یا اعمال، یہ فیصد کے اعتبار سے بھی قبول ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نا قبول ہے تو اس کا مطلب 100% قبول، اور اگر رد ہو گئی تو بالکل زیرو. ایسا نہیں، فیصد کے اعتبار سے بھی قبولیت ہے. اور روایت میں اس کا تذکرہ بھی خود پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر فرماتے ہیں کبھی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کبھی تیسرا حصہ قبول ہوتا ہے، کبھی چوتھائی حصہ قبول ہوتا ہے، کبھی پانچواں حصہ، اور کبھی دسواں حصہ. اور بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے سر پر دے ماری جاتی ہیں، اور فقط اتنی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوتی ہے جتنی اس نے پروردگار کی طرف توجہ کی ہوتی ہے. تو یعنی مکمل، کبھی نماز مکمل پر، کبھی نماز مکمل طور پر رد ہو جاتی ہے، کبھی نصف قبول ہوتی ہے، کبھی ایک تہائی قبول ہوتی ہے، کبھی چوتھائی قبول ہوتی ہے، کبھی 100% قبول ہو جاتی ہے. اچھا، थोड़ी आवाज को कम करें। अच्छा, अब ये चीज आपके अपने अख्तियार में है, ये आपके अपने अख्तियार में है कि नमाज को किस हद तक कबूल करवाना है, क्योंकि हुज़ैफा से एक रिवायत पैगंबर की यह भी है कि कुछ लोग कयामत में इस हाल में पेश होंगे कि उनकी नेकियां पहाड़ की मानिंद दिखाई देंगी, लेकिन अल्लाह उन नेकियों को गुबार बनाकर उड़ा देगा और फिर उन्हें दोजख में भेज दिया जाएगा। उस वक्त सलमान फारसी उठे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, जरा वजाहत फरमाइए, कौन लोग होंगे? तो पैगंबर ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो नमाजें पढ़ते होंगे, रोजा रखते होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, लेकिन उनका एक ऐब ये होगा, जब उनके सामने हराम आ जाता था तो उसको फौरन अंजाम दे लेते थे। तो आपने देखा कि नेकियां पहाड़ की मानिंद है, लेकिन परवरदिगार उन नेकियों को गुबार बनाकर उड़ा देगा। तो ये खतरा लोगों के साथ लगा हुआ है मुस्तकिल कि इस तरह से नेकियां जाया भी हो सकती हैं, अगर उन बातों का ख्याल नहीं किया, वो 24-25 चीजों का ख्याल नहीं किया जो भी गुफ्तगू में आगे चलकर आ रही। अच्छा देखिए, कुछ तो शराइत कबूलियत नमाज हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो कि जिनको शराइत कमाल कहा जाता है, यानी उस कबूलियत वाली नमाज में भी जितनी शराइत का मजीद आप ख्याल रखेंगे उतना ही उस नमाज का लेवल और स्टेटस बढ़ता चला जाएगा। कुछ शराइत कबूलियत नमाज, उनमें एक शर्त तो शर्त एतिकादी कहलाती है। अभी मैं सिर्फ एक खाकस आपके सामने बना रहा हूं, फिर एक एक चीज को अलग अलग भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके सामने रहे कि नमाज की कबूलियत की कितनी शर्तें हैं। एक तो शर्त एतिकादी है, पर अल्लाह पर, रसूल पर, आइमा के ऊपर ईमान लाना, यानी उसके अकायद सही हों, क्योंकि अगर अकीदा सही नहीं है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि वो अफराद, वो फिरके के जिनके अकीदे सही नहीं है, वो भी बहुत नमाजें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। शर्त एतिकादी, अकीदा भी सही होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है जिसको शर्त सियासी कहा जाता है। शर्त सियासी में, अगरचे सियासत का लफ्ज इतना ज्यादा बदनाम हो गया है कि वो उसको भी लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने लगते हैं, वरना आइम्मा की जो विलायत है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, और वहां से वो विलायत चलती हुई हमारे आखिरी इमाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम तक, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद। और उसके बाद मजीद कंटिन्यूएशन होता है तकलीद और मुज्तहिद की विलायत की तरफ, जो भी आगे चलकर गुफ्तगू आएगी, तो ये खुद उस शर्त सियासी के अंदर ही शामिल है। फिर उलमा कहते हैं कि कुछ कबूलियत नमाज की शर्त अखलाकी भी हैं, यानी तकवा और परहेजगारी जिसके अंदर आ जाती है, वो भी अभी आगे चलकर गुफ्तगू आएगी। और कुछ उलमा इसमें एक चीज का इजाफा और करते हैं कि कबूलियत नमाज की शर्त इक्तसादी, यानी लोगों के हकूक की अदायगी, मालियात वगैरह के सिलसिले में अदायगी ये जरूरी होती, और कभी शर्त इज्तिमाई भी होती, यानी अमूमी तौर पर लोगों की खैर ख्वाही, ये भी नमाजों की कबूलियत की शराइत में से। तो जो पहली शर्त थी शर्त एतिकादी, यानी उसके तमाम अकायद सही हों, अल्लाह पर उसका ईमान हो, रसूल पर उसका ईमान हो, आइमा पर उसका ईमान हो। आजकल देखिए बहुत सारे ब्रॉड माइंडेड किस्म के अफराद ने इसका दायरा बहुत वसी कर दिया है और उस जमाने की आयात को लोगों को बहकाने के लिए पेश करते हैं कि जो कि हजरत ईसा के बाद से लेकर पैगंबर इस्लाम के दौर तक दरमियान में जो अहले किताब गुजरे हैं उनके मुतालिक कुछ कुरान की आयात आई हैं कि अगर वो अहले किताब अल्लाह और रोजे आखरत पर ईमान रखते हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं तो उनके मुतालिक कहा कि उनके लिए शर्त, उनके लिए कबूलियत का दर्जा है। तो उन बातों को सिर्फ उस मखसूस पीरियड के लिए अहले किताब के हवाले से कुरान की आयात को लेकर आते हैं और लोगों को बहकाते हैं कि देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं, मुसलमान होना भी शर्त नहीं, अहले किताब वो नेक अच्छे अच्छे काम करे बस वो भी निजात पाएगा और बख्शा जाएगा। गोया उस लिहाज से पैगंबर इस्लाम की नबूवत ही को बातिल करार दे रहे हैं एक लिहाज से माजल्ला, कि अगर उनकी नबूवत पर एतकाद नहीं भी रखा जाए और कोई काफिर भी हो जो उनकी नबूवत पर एतकाद नहीं रखता और यहूदी और ईसाई हो जो अपने द्वार के पैगंबरों को मानता हो तो वो भी बख्शा जा सकता है अगर नेक आमाल अंजाम दिया जाए। तो बहुत सारे आजकल लिबरल माइंडेड इस तरह के हैं जबकि पैगंबर खुद फरमा चुके हैं कि अगर मेरे भाई मूसा भी आज मेरे दौर में होते तो आज मेरी ही पैरवी करते। تو یہ اس طرح سے، تو بہرحال اسی طریقے سے غالیانہ عقائد ہیں، اسی طریقے سے مقصرانہ عقائد ہیں، یعنی جو آئمہ کے جو حقیقی مقام ہے اس سے بہت ایک عام آدمی کی سطح تک تقریباً لے جانا، یہ بھی آج کل ایک سازش چل رہی ہے، ان کے ہر معجزے کا انکار کرنا، ان کی ہر فضیلت کو ضعیف قرار دینا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر آپ آنکھیں کھولیں، لوگوں سے جا کر ملیں، ان کے عقائد کو ذرا سا ٹٹولیں تو معلوم چلے گا کہ بہت سلو رفتار کے ساتھ، بہرحال بلکہ میں تو کہوں گا تیز رفتاری کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام اس قسم کے جو افراد ہیں، یا تو ان کو غلو کی طرف پورا لے جاتے ہیں، یعنی آئمہ معصومین کو پروردگار عالم سے جا کر اس لحاظ سے ملا دیتے ہیں کہ گویا اب وہ معطل ہو گیا ہے اور اب ان کے ہاتھ میں ہی ساری کائنات کے اختیار آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ مقصرانہ طرف چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ توسل کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے معجزات کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے فضائل کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو عقیدے کی جو شرط ہے وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے. جب بھی قرآن کی کتنی آیات ہیں، سورہ نحل کے اندر بھی ہے اور دیگر آیات میں بھی اس بات کو کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی شخص نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومنن، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو. یعنی نیک عمل خواہ کوئی بھی مرد و عورت انجام دے، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، یعنی کافر وغیرہ نہیں چلے گا اس کے اندر، جیسے کہ عام طور پر ان آیات سے سوء استفادہ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان کے لیے جنت بھی ہے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو مختصراً یہ اس میں بات بہت ہو سکتی ہے، بہت ساری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے، تیز رفتاری سے آگے جانا ہے، تو ایک ہو گئی شرط اعتقادی. دوسری ہے شرط سیاسی، یعنی جس کے اندر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جو کہ شرط اولین شمار ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور ولایت امیر المومنین کا قائل نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ولایت امیر المومنین کو ماننے والا نہ ہو. اور وہ آپ نے کتنی دفعہ روایت سنی ہے کہ ابو بصیر والی روایت، کہ جس میں امام نے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں حاجیوں کی جب کثیر تعداد کی طرف دیکھ کے تعجب کا اظہار کیا تھا، تو پھر امام نے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ابو بصیر کو دکھایا تھا کہ کوئی سور کی شکل میں تھا، کوئی کتے کی شکل میں تھا. تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد جو جن کی اس زمانے میں کثرت تھی، یہ وہی تمام افراد حاجیوں کے لباس میں جانوروں کی شکل کے اندر نظر آ رہے تھے جو کہ ولایت امیر المومنین کے انکار کرنے والے تھے. یہ ان کی اصل برزخی شکل تھی. ان کا وہ حج کتے اور سور کی شکل کے اندر، مثلا وہ کسی کام کا نہیں تھا جب تک کہ محبت اہل بیت اس کے اندر نہ پائی جائے یا ان کی ولایت کا اعتقاد وہ نہ رکھتا ہو، تو ایک باطنی شکل تھی. اور آپ میں سے تو زیادہ تر خیر نئی طالبات ہیں، پرانی طالبات کے سامنے کئی دفعہ ایک واقعہ آقا تقی بہلول کا پیش کیا جا چکا، اور بڑا تفصیل کے ساتھ، کہ جب آقا تقی بہلول کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو باقاعدہ انہوں نے، اچھا آقا تقی بہلول ان علماء میں ہیں کہ پوری زندگی تقریباً ایک مجاہدے کے اندر اور ایک جہاد کرتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے، اور کچھ ہی عرصے پہلے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور پاکستان بھی اکثر آتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے انتقال کے بعد اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا. تو بس ایک جملہ پرانی بات سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تم عالم برزخ میں ہو، کتنی افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نمازوں کو انجام دیتے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ ان کی عبادات کا کیا ہوتا ہے، کس طرح کی عبادات ہیں وہ، جبکہ وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں. تو ان کی بیوی کی روح نے، جو کہ عالم برزخ سے ملاقات کے لیے خواب میں ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ان تمام افراد کی عبادات اور نمازیں عالم برزخ میں بندروں اور ریچھوں کا رقص ہے، یعنی کہ جو کہ یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ وہی شرط ولایت ہے جو کہ نمازوں کی قبولیت کے لیے ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ انجام دے، جب تک کہ یہ والی شرط پوری نہیں ہوگی اس کی وہ نماز اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکتی قبولیت والا. تو بہرحال اب اس ولایت کے ساتھ یہ ضرور ہے आइम्मा की अहादीस है कि हमारी विलायत के दर्जे तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है, विलायत तक पहुंच नहीं सकता है सिवाय इल्ला बिल अमल वल वरा, सिवाय इसके कि वो नेक अमाल को अंजाम दे और तकवा परहेजगारी को अख्तियार करे। यानी फकत विलायत को सिर्फ अकीदा रख लेना कि हम ठीक है उनको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उनको ऐसा इमाम मानना कि जिनकी इताअत अल्लाह की तरफ से फर्ज करार दी गई है, अगर ये वाला एतकाद आपका है लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके अहकाम की पासदारी नहीं कर रहे हैं, उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये आपका विलायत का अकीदा कामिल विलायत वाला शुमार नहीं होगा। और इसके अंदर एक बात और ही ये भी है बहरहाल कि जब तक यानी विलायत का अकीदा उस वक्त कामिल शुमार होगा कि जब आप तकवे और परहेजगारी के साथ उस अकीदे की हामिल बनेंगी, वरना विलायत का उतना अकीदा नाकिस रह जाएगा। यानी अकीदा विलायत आपके पास है लेकिन फीसद के एतबार से नाकिस है, जितना अमल उसके साथ साथ आपका होता जाएगा, जितना अमल उसका आपके साथ आपका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा विलायत का अकीदा जितना मजबूत होगा उतनी कबूलियत नमाज होगी, और जितना अमल कम होगा उतना विलायत के अकीदे में कमी होगी, उतनी नमाज नाकिस रह जाएगी। कबूलियत का वो मियार नहीं होगा कि जो कि एक मुकम्मल बाअमल शख्स और मुत्तकी परहेजगार शख्स का अकीदे विलायत के तहत नमाज की कबूलियत का एक मियार होता है। और दूसरी चीज एक और इमाम हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, वो भी बराबर का हिस्सा रखती है, और वो है दुश्मनान अहले बैत से नफरत करना। ये विलायत का हिस्सा है, बाकायदा बिहार की 84वीं जिल्द जो है उसमें किसी ने चौथे इमाम से आकर यही सवाल पूछा था कि मौला कौन सी चीज हमारी ऐसी है जो नमाज को कबूल करवाने का सबब है, कहा कि हमारी विलायत और हमारे दुश्मनों से नफरत की वजह से तुम्हारी नमाजें कबूल होती। अलबत्ता इसका मकसद वो नहीं कि इंसान तासुबात की आग को गर्म करे और उसको फरोग दे और माशरे के अंदर एक फितना फसाद को पैदा करे, ये एक अलग से एक हुक्म है कि इस तरह से दीगर मुसलमान फिरकों के मुकद्दसात की तौहीन करना, जिनके लिए उलमाए कराम के फतावे भी आ चुके हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोग जिसको उस अंदाज से समझ लें कि उनसे बिल्कुल शीरो शकर हुआ जाए और वो तमाम दुश्मनान अहले बैत की मोहब्बत भी दिल के अंदर रखी जाए या ये कि उनको अच्छा समझा जाए, ये फतवे का मिज़दाक नहीं। गलत तौर पर लोग अक्सर इसको उस अंदाज से भी लेने लगते हैं। तो एक तो यानी वो इबादत कि जो कि विलायत के अकीदे से आ रही हों वो कबूल नहीं है, जैसे कि अभी आपने सुना कि गोया वो तो रीछों और बंदरों को रक्स की तरह से, वरना क्या वजह है कि आप देख रहे हैं कि खवारिज के मुतालिक जिन्हें जहन्नम का कुत्ता बहुत सी रिवायतों के अंदर कहा गया है, यानी जिन्होंने जंग नहरवान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग की थी, उन सब की इतने ज्यादा नमाजी थे खवारिज के पेशानी पर सजदों के निशानात थे, और लेकिन क्या हुआ कि विलायत के मुकाबले पर आए और नजिस और काफिर शुमार हुए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हाकिम शाम और यजीद ये मुसलमानों की नमाज जमात की इमामत तक करवाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ उसके बावजूद अकीदे इमामत और विलायत से आकर टकराए, कुफर और निफाक की पूरी निजासतों की पोट अपने साथ लेकर दुनिया और आखरत की हर खराबी और बुराई को अपने साथ लेकर गए। तो ऐसी नमाजें काबिल मजम्मत हैं, ऐसे हज काबिल मजम्मत हैं, जिनके मुतालिक शायर कहते भी हैं ना कि तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, यानी जो तू तवाफ कर रहा है ये सर में नसीब का चक्कर, अगर अकीदे विलायत के बगैर किसी ने इन इबादत को अंजाम दिया तो उसकी हैसियत नहीं। अच्छा, इसमें एक उलमा एक चीज और भी बयान करते हैं कि जो अकीदा विलायत है आपके पास ये बिल्कुल अकली भी है। देखिए, अगर एक बस है उसके अंदर बहुत सारी सवारियां हैं, सारी सवारियां जो बैठी हुई हैं बहुत ही बाइज्जत हैं, महज़ब हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, ठीक है, लेकिन जो बस का ड्राइवर है वो लापरवाह है, नशे की हालत में है, ड्राइविंग के असूलों से नावाकिफ है, तो चाहे सारी सवारियां कितनी ही आला तालीम याफ्ता और सिफात की हामिल क्यों ना हो, और ड्राइवर अगर इस किस्म का है तो ये सफर कभी भी खैरियत के साथ तय नहीं होगा और कहीं कहीं ना कहीं बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में चाहे सवारियां कमिल्म हो, लापरवाह हो, जाहिल हो, बेदीन हो, फासिक व फाजिर हो, लेकिन ड्राइवर फर्श चनास हो, असूलों से वाकिफ हो, نشہ نہ کرتا ہو، تمام یعنی لاپرواہ نہ ہو، تو چاہے کتنی ہی خراب قسم کے مسافر کیوں نہ بیٹھے ہوں، بہرحال یہ سفر اپنے منزل تک بخیریت اختتام پذیر ہوگا. یہی عقیدہ بالکل عقلی ہے جو ہمارا ولایت کا نظریہ ہے کہ اگر چاہے ہم فاسق و فاجر و بدکار بھی اگر ہو جائیں، لیکن بہرحال ایسے امام کے ماننے والے ہوں، سمجھیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسا بیٹھا ہوا ہے جو کہ فرش شناس دیانتدار اللہ کی طرف سے ہے، وہ بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا یہ سفر کامیابی کے ساتھ طے کروا دے گا. اس بنسبت ایسے افراد کے کہ آپ کتنے ہی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں اور ڈرائیور کوئی اس قسم کا آ جائے تو وہ آپ کو خطرات سے دوچار کرے گا. اچھا، اب اسی میں ہی ولایت کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بات مجتہد کی یا فقیہ کی ولایت کی طرف جاتی ہے، جس اور اس کے بعد پھر اسی کو ہی ولایت فقیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ موضوع ہے، علماء اس پہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، لہذا اس کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن جو ایک سب کے لیے تقریباً قابل قبول بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نظریے کے بہت سارے مخالفین ہیں، تو چلیں کم سے کم ہر مجتہد کے پاس جو ولایت ہوتی ہے اس کا تو قائل ہونا پڑے گا نا، یعنی ہر مجتہد کے پاس ولایت ہوتی ہے. تو جو بھی تقلید کے بغیر بالفرض اگر کسی نے اس طرح سے انجام دے رہا ہے اپنے اعمال کو کہ جس میں وہ مجتہد کی تقلید نہیں کر رہا ہے، تو اس کا عمل بھی قبول ہونا بہت مشکل. تمہیں کیسے پتا چلا کہ احکامات پروردگار کیا ہیں، کہاں تمہاری سورس کیا ہے؟ تو تم اتنے بڑے عالم ہو کہ خود مجتہد ہو جاؤ، یا اتنا علم رکھو کہ محتاط ہو جاؤ، احتیاط سے کام لو، کسی کے بھی فتوی کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو. محتاط ہونے کے لیے تو خود تقریباً مجتہد ہی ہونا پڑتا ہے، ورنہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی شخص اتنی احتیاط سے. اور پھر تیسرا، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں تو لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کو تقلید کرنا پڑے گی. تو وہی سلسلہ ولایت کا آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک مرجع کی تقلید تک بھی آ جاتا ہے، ورنہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا، اور عمل صحیح نہیں ہوگا تو نماز قبول کیسے ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد اگرچہ اس پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کتنا کم ہے اور دیگر موضوعات بھی ہیں، اگلے لیکچر بھی ہوں گے. پھر اگلی شرط ہے قبولیت نماز کی شرط اخلاقی، یعنی جتنا کوئی شخص گناہوں سے بچے گا اتنی ہی اس کی نماز فیصد کے اعتبار سے قبول ہوگی. یعنی مسلسل گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا یہ اعمال اور نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. اور خود اس کی دلیل قرآن کی ایک آیت بھی ہے، جو کہ آیت تو ابھی آگے چل کر آئے گی، لیکن یہاں تک روایت کے اندر بات کہی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کر کے یعنی جو گناہ ہیں ان سے لذت اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ذلیل کر دیتا ہے. آخرت میں تو وہ ذلیل ہوگا، کتنے ہی گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی کے اندر میں ملتی ہے کہ وہ ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شرط اخلاقی کہ اخلاق اس کا صحیح ہوگا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کی نمازیں قبول ہوں گی. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک پروردگار صرف متقین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے جن میں یہ ملکہ ہو، جو صلاحیت ہو کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں. دیکھیں، ایک تو گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان چھپتے چھپاتے شرمندہ ہوتے ہوئے تنہائی کے موقع پر جو ہے انجام دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے گناہ کو علل اعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. ایسے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کی تو مشکل سے شاید توبہ کی توفیق بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، جو انسان علل اعلان گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ خطرناک ترین گناہ ہیں. قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ ہیں، یہ اس کی ہم ان کی نیکیوں کو جو یہ گناہ انجام دیتا ہے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے، یعنی ہوا منصورہ ان کی جس طرح ریت کے ذرات اڑتے ہیں اس طرح سے ہم ان کی نیکیوں کو بنا دیں گے، جو کہ قرآن کی آیات بھی آئی ہیں جس میں حبام منصورہ نے ریت کے ذرات کی مانند ان کے اس عمل کو بکھیر دیا جائے گا. اور العدت الدائی یا عدت الدائی ابن فہد حلی کی جو کتاب ہے، اس میں راوی نے اسی آیت کے معنی آ کر امام سے پوچھے تھے کہ مولا یہ جو آیت کے اندر آیا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم ان کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے، یہ کس قسم کی بات کی گئی؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان کے اعمال بہت سفید اور نورانی ہوں گے، लेकिन जब उनके सामने कोई गुनाह को पेश किया जाता था तो वो कभी उसको तर्क नहीं करते थे। कितनी आम जिंदगी में मिसालें, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, बापर्दा बाहिजाब खवातीन हैं, लेकिन जब शादी ब्याह की तकरीब में जाना पड़ता है, सालगिरह की तकरीब में जाना पड़ता है, मेहंदी की तकरीब में जाना पड़ता है, वही बापर्दा खवातीन मुकम्मल फुल मेकअप के साथ और ऐसे कपड़े जो कि जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है, इस तरह के लिबास पहनकर नामहरमों के दरमियान मिक्स गैदरिंग के अंदर जाती। यानी जब मौका पेश आ गया, गुनाह का उनके सामने पेश कर दिया, तो ख्वाह कितने ही आमाल नूरानी क्यों ना हो, ये फौरन उनको लपक के जाते हैं और उन गुनाहों को अंजाम दे लेते हैं, नहीं कभी उस गुनाह को रिजेक्ट नहीं करते। तो हबाम मंसूरा, इमाम ने फरमाया इस आयत का मिज़दाक़ है, खुदा उनके तमाम नेक अमाल को रेत के जर्रात की मानिंद उड़ा कर रख देगा। कितनी खतरनाक बात है, यानी जो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमने नमाज मुतमईन हो जाते हैं, नमाजें अंजाम दे ली हैं, अभी शब कदरों में कितना गिरिया उजारी किया है, रमजान भी बहुत अच्छा गुजारा है, और उसकी लेकिन उसके बाद ईद आई, उसके अंदर जो है वो बेपर्दगी, बेहिजाबी, मेकअप करके आना वगैरह, इसी तरीके से मर्दों के भी चीजें हैं। जब भी कोई मौका पेश आया, बस उससे रुके नहीं और उसको अंजाम दे लिया। तो मिरतुल उकूल में बाकायदा जो कि असूल काफी की शरह अल्लामा मजलिसी ने लिखी है, उसमें कहा है कि इस ये जो आयत है इसका मतलब ये कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करना ये नेकियों को खत्म करके रख देता है। इस लिहाज से अगर नमाजी नमाजों को चाहे वो अच्छे तरीके से अंजाम दे भी क्यों ना ले, लेकिन बुराई के मौके पर, गुनाह के मौके पर उस फेल को तर्क ना करे और अंजाम दे ले, तो वो इस आयत का मिसदाक हो जाता है, या तो उसकी नमाज का सवाब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है या कबूलियत के दर्जे से बहुत कम रह जाता है। देखिए आयतुल्ला जवाद आमली ने बड़ी अच्छी बात कही, वो फरमाते हैं कि नमाजों के मकबूलियत का पता चलाने के लिए कयामत के इंतजार की जरूरत नहीं कि वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई, क्योंकि फरमाते हैं इसके तमाम आसार और अलाइम ये बयान कर दिए गए, इस तमाम आसार बयान हो गए। इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, यानी नमाज बेहैर बुरी बातों से रोकती है। तो फरमाते हैं अगर जोहरैन की किसी ने नमाज पढ़ी और मगरबैन तक कोई गुनाह नहीं किया तो वो समझ जाए कि जोहरैन की नमाज कबूल हो गई, और जोहरैन से लेकर और मगरबैन से लेकर फजर तक कोई गुनाह नहीं किया, इसमें बहुत मवाक़े हैं, हर वक्त टीवी इसी के अंदर ही खुला रहता है, तो इस दौरान कोई गुनाह नहीं किया फजर तक, समझें कि मगरबैन की नमाज कबूल हो गई, और फजर से जोहरैन तक कोई गुनाह नहीं किया तो वो समझ जाए, बल्कि फरमाते हैं कि वो मुतमईन हो जाए कि उसकी नमाज कबूल हो गई अगर इस दौरान उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि कयामत के आने का, मरने का इंतजार किया जाए और अभी शक व शुबे की हालत में रहा जाए कि पता नहीं हमारी नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई। बिल्कुल वाज़े सी बात है, रोजाना की बुनियाद पर आप पता चला सकती हैं कि आज मेरी जोहरैन की नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, मगरबैन की कबूल हुई या नहीं हुई, या फजर की। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि समझना चाहिए इसको, और खुद ये हम बात हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं जिसे ये बात पसंद हो कि उसे ये बात पता चल जाए कि उसकी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई, तो वो ये देखे कि वो कितना गुनाहों से बचता है। बस जितना वो गुनाहों से बच रहा है, जितना फवाहिशात और मुनकरात से बचता रहेगा, उतनी उसकी नमाज कबूल होती रहेगी। कम बचेगा कम कबूल होगी, ज्यादा फवाहिशात से बचेगा, गुनाहों से ज्यादा बचेगा, ज्यादा कबूल होगी। अब देखिए कितनी रिवायत ऐसी जिसमें पैगंबर खुदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए परवरदिगार ने को बाकायदा परवरदिगार ने हजरत दाऊद पर वही की कि बाज नमाजी ऐसे हैं कि जो कि बहुत खुशू से नमाजों में काम लेते हैं और बहुत तूलानी रकतें पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नजदीक उनकी नमाजें एक फतीला खजूर के दानों की बटी हुई बेकीमत रस्सी के बराबर भी नहीं। बहुत से लोग बहुत खुशू के साथ नमाजें पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा तूलानी रकतें करते हैं, नमाजों में गिरिया तक करते हैं, लेकिन उनकी नमाजें मेरे नजदीक खजूर के दानों की बटी हुई बेकीमत रस्सी के बराबर भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं उनके कुलूब पर निगाह डालता हूं तो मैं ये देखता हूं जब भी कोई गुनाह का मौका आता है वो गुनाह से रुकते नहीं और फौरन अंजाम दे लेते हैं, और जब किसी मोमिन का के साथ उन्हें कोई मामला करना पड़ता है तो उसके साथ खयानत से काम लेते हैं। اتنی بے قیمت اور حقیر نمازیں ہیں، چاہے وہ خواہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں، خواہ وہ کتنی ہی طولانی رکعتوں کے ساتھ پڑھی جائیں، خواہ کتنی ہی گریہ و زاری کے ساتھ پڑھی جائیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی تو نماز مکمل کی ہے ہم نے اور تمام تعقیبات سے بھی فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، اور پھر اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا ہو کہ اس نماز کو قبول کیسے کروائیں، تو ان کی ساری شرائط ہیں. تو یہ دیکھیے آپ، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلسل گناہ کرتا جائے اور نمازیں پڑھتا جائے، گناہ کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، اسے کبھی بھی اہل نماز نہیں کہا جا سکتا. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ فقط نماز کے واجب کو اپنی گردن سے اتار کر پھینکنے کی فکر میں رہتا ہے، بس میرا واجب کام ادا ہو جائے پھر میں وہ اپنی پرانی، دو منٹ تو لگیں گے، عادت ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، عادت ہو جائے تو آدمی کو عجیب سا لگتا ہے، پھر معاشرے کا پریشر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کتنے افراد ہیں جو طالب علم یہاں سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ سب نمازیں وماز بھی فراموش کر دیتے ہیں، یہاں کا کوئی پریشر ہی خاندان کا نہیں ہو پاتا کہ لوگ برا سمجھیں گے، بہانے پڑتے رہتے ہیں، عادت ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اہل نماز نہیں کہا جا سکتا کہ اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں اس کو اپنی گردن سے، کہ کیا مصیبت، بہرحال ایک مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو ان کو قبولیت نماز کی فکر نہیں ہوتی، بس ادائیگی کسی طریقے سے بھی ہو جائے، اور فواہشات اور منکرات سے بچتے نہیں، لہٰذا ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ایسے اشخاص کے متعلق جو مسلسل گناہوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، گناہ بھی خوب ہو رہے ہیں اور نمازیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص جس شخص کی نماز کو گناہ سے باز نہیں رکھتی، وہ نماز اس کو خدا سے مزید دوری کا سبب بن جاتی. مزید دوری میزان الحکمہ وغیرہ کے اندر نہیں، بلکہ تفسیر المیزان کے اندر اللہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ چیز لکھی ہے، مزید اللہ سے دوری کا سبب یہ نماز بنے گی اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. اور کم سے کم اتنا تو پروردگار کا خیال کرنا چاہیے، وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے. اسرار الصلاۃ کے اندر شہید ثانی نے ایک روایت نقل کی، ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، خدا سے میں کس طرح سے حیا کروں، خدا سے حیا کیسے کی جاتی؟ تو پیغمبر نے فرمایا جس طرح سے تم اپنی قوم کے کسی نیک بندے سے حیا کرتے ہو، کم سے کم اتنی حیا تو خدا سے کرو. مثلا کوئی نیک آدمی، کوئی مولانا صاحب، کوئی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ ٹی وی کی آواز کو کم کر دیتی ہیں، آپ کہیں موسیقی کسی نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیتی ہیں، کچھ تو انسان خیال کرتا ہے. اور یہاں وہ تو کبھی گھر میں آ جائیں گے، پروردگار تو ہر وقت آپ کے ساتھ، یہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو دروازہ کھول کے بلانا پڑے یا اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے یا گھر کے اندر بلانا پڑے، ہر جگہ پہ موجود ہے. اتنا تو خیال کرو جیسے کہ نیک آدمی کا تم خیال کرتے ہو کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام افراد جو کہ اتنے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ نمازوں کے ساتھ ان کی بھی انجام دہی کرتے ہیں گناہوں کی، تو اس کے ساتھ نمازوں کی قبولیت نہیں شمار کی جائے گی. اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ اس میں ایک مایوسی سی بھی پیدا ہوتی کہ بھئی گناہ تو ہم سے بہرحال ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب نماز قبول ہی نہیں ہونی ہے ہماری تو ہم پڑھ کے کیا کریں گے، گناہ تو ہم سے بہرحال چھوٹ نہیں رہے. تو ان کے لیے بھی ایک بات یہ ہے جو کہ نہج البلاغہ میں جو کلمات قصار ہیں اس میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ، وہ علی جو امام المتقین ہے، اس سے تو گناہ کا سوچنا بھی اس کے متعلق جو ایک محال چیز ہے، لیکن امام اکثر اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے بتاتے تھے تاکہ آپ کو امر بالمعروف میں آسانی رہے. ورنہ بات ہمارے لیے کہی گئی کہ ہر وہ گناہ جس کے بعد مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، وہ نماز مجھے کبھی غمگین نہیں ہونے دے گی. یعنی گناہ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کہیں کہ بھائی گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نماز آپ کو گناہوں سے بچا لے گی. یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی کسی کو توفیق مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کو شرمساری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہ بہرحال نماز ان تمام چیزوں کو روکنے میں مومد و معاون ثابت ہوگی. پڑھتا جائے یہاں تک ایک موقع پر گناہ اس سے چھوٹ ہی جائیں گے. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے. تو بہت سی تفاسیر کے اندر، تفسیر المیزان کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگوں نے ایک زمانہ تھا बहुत ही सेंसिटिव भी हुआ करते थे। लोगों ने आकर रसूल अल्लाह से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान है जो गुनाह भी बहुत करता है लेकिन नमाजें भी हम उसको पढ़ते देखते हैं। बाकायदा शिकायत की पैगंबर से आकर, पैगंबर ने फरमाया अनकरीब ये नमाज उसको गुनाहों से रोक देगी। अच्छा, उसके बाद वो नौजवान कुछ ही अरसे बाद वाकई मुतवज्जे हुआ, तौबा की तरफ रागिब हुआ, उसने सच्ची तौबा की, गुनाह तमाम छोड़ दिए। पैगंबर ने उसके बाद फिर अपने असहाब को जमा करके फरमाया कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि यही नमाज उसको गुनाहों से बचा कर ले जाएगी, और बिलाखिर अब वो गुनाहों से महफूज हो गया। तो बहरहाल अब एक बात इसके अंदर और भी रहे कि तकवा जो है ये कबूलियत नमाज को आला मियारात की तरफ लेकर जाता है, और यही वजह है कि अहादीस के अंदर भी यह बात आई है कि मुत्तकी और परहेजगार की जो दो रकात नमाज है ये लापरवाह शख्स की 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी जितना तकवा और परहेजगारी का मियार आपका बढ़ेगा उतना ही आपका नमाजों का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, उतना ही कबूलियत का मियार भी बढ़ेगा। एक तो एक गुनाह से इंसान अपने आप को रुक जाए, लेकिन ये कि जितना तकवा परहेजगारी के मनाजिल तय होती जाएंगी, जितना लेवल ऊपर जाएगा उतना ही कबूलियत नमाज का लेवल भी ऊपर जाएगा। अच्छा, इसके मुकाबले में देखिए, लोग उलमा अच्छी मिसाल देते हैं कि देखिए दरख्त को बोने में कोई खास वक्त नहीं लगता है, बीज बीज आपने डाल दिया। असल मसला ये होता है कि इसके बार आवार होने तक, फलों फूल देने तक, इसको आफात से, इसको बलाओं से, इसको मौसमों से, इसको जानवरों से, इसको हवाओं से, कीड़े मकोड़ों से बचाया जाता है। इस दरख्त को कितनी दुश्वारियां इसको महफूज रखने में आती हैं। इसी तरीके से ये जो गुनाह और नाशाइस्ता अफाल हैं हमारे, ये भी हमारी नेकियों को गोया एक लिहाज से कीड़ा लगा देते हैं। मसलन हसद का कीड़ा लग गया आपके अमल को, अब क्या होगा, वही कि हसद इस तरीके से आपकी नेकियों को खा के रख देता है जिस तरीके से आग सूखी लकड़ी को खा जाती। अब क्या है कि ये नेकियां आप अंजाम दे रही हैं, नमाजें आप पढ़ रही हैं, लेकिन लग गया है हसद का कीड़ा साथ में उसको, अब ये इसको बर्बाद करके छोड़ेगा, अब इसको बचाना पड़ेगा इस नमाज को हसद के कीड़े से, अब बचाना पड़ेगा इस नमाज को गुरूर के कीड़े से। क्योंकि देखिए तमाम चीजें इसको लगाना तो आसान है, नमाज आपने पढ़ ली, इसके बाद इसको महफूज करना है जब तक ये तमाम बुराइयां खराबियां वबाई अमराज इनसे बचाते हुए इस नमाज को यहां से लेकर जाना है, यहां तक कि मौत हमारी आ जाए तब तक इन नमाजों की हिफाजत करना है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि ये सदकात, ला तुबतुलु सदकातिकुम बिल मन्ने वला, अपने सदकात को मन्नत रखकर एहसान जिताकर अजियत देकर बातिल ना करो। इस पर हमारी सदके के अंदर काफी तफसील से बात भी हुई थी कि सदका को बातिल कैसे, सदका बातिल कैसे हो जाता है। इसके अंदर एक चीज ये थी कि सदके सदकात को जिताना, यानी अब ये जिताना, उसके ऊपर एहसान जितलाना, ये क्या है, कीड़ा लग गया है सदके को, ये सदके को खाकर रख देगा, उसको बातिल कर देगा, उसका फायदे आप तक नहीं पहुंचने देगा। और तो यही मसला नमाजों के साथ भी होता है, यही मसला नमाजों के साथ भी। तो देखिए बाज़ औक़ात होता है ना कि इंसान किसी जॉब जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, बाज़ औक़ात उसका उसके सीवी में तमाम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन हर चीज मौजूद होती, लेकिन मसलन जिस वक्त इंटरव्यू के लिए जाए और वहां पे मिसकंडक्ट का मुजाहरा करे, बदअखलाकी का मुजाहरा करे इंटरव्यू लेने वालों से, उसको जॉब नहीं मिलती अगरचे उसका सीवी मुकम्मल हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से उलमा ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पिछला जो कंडक्ट होता है, बद अखलाकी का मुजाहरा, अपने कलीग्स के साथ बद अखलाकी का मुजाहरा, चाहे सीवी आपका बिल्कुल सही है इसके अलावा, लेकिन कहीं इस तरह की बातें तब भी उसको जॉब वगैरह नहीं मिलती। तो ये शर्त अखलाकी दुनिया के अंदर भी ये सब चीजें आती हैं, तो नमाजों के अंदर भी इसी तरह से। अच्छा, अब एक मसला ये कि आखिर हमारी नमाजों की कबूलियत की जरूरत क्या है। तो देखिए, एक तो वही जरूरत है जो कि आप हदीसों के अंदर भी सुनती हैं कि नमाज को अमोदुद्दीन या इमादुद्दीन, दीन का सतून कहा गया है। और यह भी हदीस आपने कितनी दफा सुनी होगी कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे आमाल कबूल होंगे, और अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। इस लिहाज से भी कबूलियत है, लेकिन इसकी एक कबूलियत की वजह और भी है जिसे मल्ला या हजरहुल फकी में शेख सदूक ने नकल किया है। वो क्या है, वो ये है के पैगंबर फरमाते हैं कि दुरूद भेजना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि व आले मुहम्मद।
فائدہ یہ ہے نمازوں کی قبولیت کا کہ پروردگار جس بندے کی بھی نماز کو قبول کر لیتا ہے پھر اسے کبھی بھی مبتلا عذاب نہیں کرتا، پھر اسے کبھی کوئی عذاب نہیں دے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار کسی کی نماز کو قبول کرنے کے بعد اس کو عذاب دے، یعنی اس کی بخشش یقینی ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ تمام شرائط ہیں کہ اس نماز کو بچائیے، اس کو قبولیت کے معیار تک لے جائیے، تمام اعمال بھی اسی کی وجہ سے آپ کے قبول ہوں گے اگر یہ قبول ہو جائے گی. اور ایسے شخص کو جس کی نماز قبول ہو جائے پروردگار کبھی بھی مبتلا عذاب نہیں کرے گا. یہ اس کی ایک بہت اہم چیز ہے. اچھا، اس سے کہیں پہلے نمازوں کی قبولیت، یہ پچھلی دفعہ جب نشستیں ہوئی تھیں تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے اگر پہلا مرحلہ قبولیت سے پہلے کا مرحلہ یہ کہ نماز صحیح ہو جائے، فقہی مسائل کے تحت نماز بالکل صحیح ہو جائے گی تو پھر قبولیت کا امکان بھی بڑھ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جاویدہ یہ بات فرماتے ہیں، فقہی مسائل سے عدم آشنائی اگر کسی کی ہے تو نماز گویا پہلے مرحلے ہی کے اوپر رک جائے گی. تو آیت اللہ جاویدہ فرماتے ہیں قبولیت سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ظواہر نماز کی درستگی کا ہے، یعنی جب عمل درست ہوگا تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے درست عمل کے ذریعے یعنی نماز شرعی تقاضوں کے مطابق پوری پڑھ لے تو بہت بعید ہے کہ پروردگار اس کی نماز کو رد کر دے. اور واقعی یہ بھی ہے کہ جو اتنی مسائل فقہ کا خیال رکھے گا کہ حکم خدا یہاں کیا ہے، حکم خدا یہاں کیا ہے، مجھے مستحبات کون سے نماز میں انجام دینے ہیں، کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو اتنا خیال رکھنے والا نوک پلک کے اعتبار سے فقہی مسائل کا ہوگا وہ یقیناً عملی زندگی میں بھی اس کا عمل بہتر ہوگا اور گناہوں سے بچتا ہوگا. یہ اس کے اندر خود ایک راز بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز بالکل قواعد کے مطابق ٹھیک پڑھ لی حکم خدا کے مطابق تو بہت بعید ہے یہ بات، بہت دور ہے اللہ کی رحمت سے یہ بات کہ وہ درست کسی عمل کو نامقبول قرار دے، وہ کہہ کہ نہیں تمہارا عمل ضائع اور بیکار ہو گیا. اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ جتنا خیال رکھنے والا ہے وہ یقیناً اس طرح کی کوتاہیاں بھی نہیں کرتا ہوگا، یا کوتاہی کر بھی دے تو توبہ کی طرف مائل ہو کے اس گناہ کو بخشوا لیتا ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار میں جو جلد نمبر 84 ہے اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جو اہل تقویٰ نہیں ہیں اور رکوع اور سجود کو کامل طریقے سے بجا نہیں لاتے، ہل رہے ہیں، ذکر صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، جلد بازی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے افراد کی نماز خدا قبول نہیں کرتا ہے. یعنی جو نمازوں میں رکوع و سجود کو صحیح طور پر بجا نہ لائے اور جو اہل تقویٰ نہ ہو، روایت میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ اگر کوئی شخص وضو خانے جانا پڑ جائے اس کو، کبھی وہ پریشان ہے، کوئی دیندار آدمی ہے واقعی پریشان ہو جائے گا کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے وضو کر رہے ہیں، غلط سلط وضو کر رہے ہیں. مساجد کے اندر اگر ادھر ادھر ذرا سے بھی آپ نے دیکھنا شروع کیا، آپ کو بہتر ہے کہ بالکل بیٹھے رہیں خاموشی سے گردن جھکا کے، ورنہ آپ پر امر بالمعروف واجب ہوگا. یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ گردن جھکا کے بیٹھا رہے یا ایک ایک نمازی کو پکڑ کے بتائے کہ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو. اسی طرح سے عورتوں کے مخصوص مسئلے، کتنے ان کے استحاضہ وغیرہ کے مسئلے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس موقع پر ہماری نماز کی ذمہ داری کیا ہے. کتنی عورتیں ہیں بچے کی پیدائش کے بعد کتنی زیادہ 40-40 دنوں تک نماز نہیں پڑھ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے مسائل ہیں. تو ہم معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، قرآت کی کتنی ایسی غلطیاں ہیں کہ لوگوں کے وہ صحیح طور پر نہیں ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ لوگ پہلے قبولیت کا مرحلہ تو نماز کے بعد آئے گا نا، کہ جب آپ نے نماز صحیح طور پر پڑھ لی ہوگی. یہاں تو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر اٹک کے رہ گئے. ورنہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر ایک دفعہ بھی نماز مکمل قواعد کے تحت صحیح طور پر پڑھ لی جائے تو بہت بعید ہے کہ وہ نامقبول ہو. لیکن مسائل فقہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز کو اپنی کم سے کم وضو صحیح کر لیں، نمازوں کو قرات کو صحیح کر لیں، عورتیں اپنے مخصوص مسائل کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. اور اتنا علماء اس کا خیال رکھنے والے تھے کہ ادائیگی صحیح طور پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بعض اوقات شک آ جاتا ہے، بعض اوقات بلوغ کے ابتدائی زمانے کا انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نمازیں اس زمانے میں صحیح نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام خمینی نے وصیت کی تھی کہ میری 4 سال کی نمازیں قضا کروائی جائیں، وصیت نامے میں ان کا ہے کہ 4 سال کی نمازیں قضا کروائی جائیں. کیونکہ ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے مرجع وقت تھے اور تقوی پرہیزگاری کا کوئی ثانی نہیں تھا، लेकिन बहरहाल ये कि इंसान सोचता है एहतियात पसंदी के अंदर जाता है कि हो सकता है इब्तदाई दौर में कुछ इस किस्म की नमाजें हो जिसमें ख्याल नहीं रखा हो मैंने, तो शक की हालत में तो उसको पढ़वाना भी कोई वाजिब नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक एहतियात का तकाजा ही है। शेख मुर्तजा अंसारी जो कितने बड़े मर्जी और मुज्तहिद गुजरे हैं, और उन तक ने अपनी वसीयत में इस बात का इजहार किया था कि मेरी पूरी जिंदगी की नमाजें दोबारा पढ़वाई जाए, लेकिन ये नहीं कि कोई वसवसे के एतबार से, बल्कि कि जो उनके तकवे का मेयार और एहतियात का जो मेयार उनके पास था उसके तहत उन्होंने इस बात की वसीयत की थी। एक खातून मुबल्लिगा जिनकी दीन के लिए बड़ी खिदमात हैं, माशाल्लाह हयात हैं, उन्होंने उनके मुतालिक मुझे बात पता चली थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर बाकायदा कहा था कि जो सोना मेरा रखा हुआ है मैं वसीयत कर रही हूं मेरे मरने के बाद मेरी सारी नमाजें इससे दोबारा पढ़वाना। वो अगरचे मसाइले फिका भी बयान करती हैं, मसाइले दीनिया को समझती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक एहतियात का तकाजा होता है कि सोना ये सारी चीजें जमा करके जो आप लॉकरों में और दिन रात परेशान घूम रही होती हैं, कि इसकी यकीन कीजिए कि लॉकर्स के अंदर रखे हुए मिट्टी के और पत्थर के ढेलों से ज्यादा इन चीजों की हैसियत नहीं है। तो बेहतर है कि मरने के बाद भी कम से कम इस किस्म की वसीयत कर जाएं कि चीज काम आ जाए। अब तो वैसे भी लोग आर्टिफिशियल जेवरात पहन के जाते हैं, लुट लुटा ना जाए, और पर्दे के अहकाम हैं और उसके अंदर होते हैं कि उसको जाहिर भी नहीं कर सकते हैं किसी जगह, नामहरमों का हर वक्त आमना सामना रहता है, तो नतीजा है कि वो लॉकरों के अंदर रखे रह जाते हैं और बाद के अफराद उसको तकसीम करते रहते हैं, यानी आपके उस लिहाज से काम नहीं आ रहे होते। तो अपने उसके लिए अपनी जिंदगी के लिए कारामत बनाए इन चीजों को। तो बहरहाल उसके अंदर यह है कि एहतियात का तकाजा, तो ये नमाजें इतनी कीमती हैं कि इनके लिए इस तरह की कि इनको इस मेयार तक ले जाना कि कबूल हो जाए, ये सही हो जाए, इसके लिए तगोदो करना ये जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से एक माने कबूलियत नमाज एक और अमल है, वो है माल हराम। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये किसी ना किसी तरीके से हमारे अमवाल के अंदर ऐसा आ जाता है मुख्तलिफ जराए से, और इसकी तासीर ये है कि माल हराम अगर ये आ गया है गजा के अंदर, तो ये खुद नमाजों की कबूलियत के अंदर रुकावट बनता है, नमाजों की कबूलियत में रुकावट। बाकायदा पैगंबर इस्लाम की एक रिवायत है, कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जो हर रात बैतुल मकदस या बैतुल मुकद्दस से एक आवाज बुलंद करता है कि जो कोई भी हराम खाता है खुदा उसका कोई अमल कबूल नहीं करता, ख्वाह वाजिब हो या मुस्तहब, कोई अमल उसका कबूल नहीं करता है, जो भी लुकमा भी अगर उसने हराम का इस अंदाज से खाया। तो आप देखिए कि अमाल के अंदर तो नमाजें भी आ गई, उसकी कोई अमल उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि परवरदिगार फकत मुत्तकीन के अमाल को कबूल करता है। इसी तरीके इस तरह से जितने भी मुलाजमत पेशा अफराद हैं, जो कारोबारी पेशा अफराद हैं, इनको अपने जॉब और अपने कारोबार के सिलसिले में मसाइल फिका को उलमा से दरियाफ्त करना चाहिए, ये नहीं कि बस वरना रिवायतों के अंदर आएगा, वरना वो लाजमी किसी हराम के अंदर मुबतला हो जाएगा अगर उसने इनकी पासदारी नहीं की। मुलाजमतों के अंदर भी बड़ा मसला है, मालिक की इजाजत के बगैर चीजें इस्तेमाल करना और औकात की पाबंदी ना करना और एग्रीमेंट की मुखालिफत करना। इसी तरीके से कारोबारी मामलात के अंदर भी इंसान सूद का शिकार हो जाता है, धोखेबाजी का शिकार हो जाता है, कैसी चीजें प्रेजेंट करता है ग्राहकों के सामने बेचने के लिए जबकि वो ऐसी नहीं होती, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, तो अपनी इस तरफ जरूर जाना चाहिए। यही वजह है कि पैगंबर एक जुमला इरशाद फरमाते थे कि जो भी पैगंबर का भी है, और यही जुमला जो है, नहीं पहले तो पैगंबर का जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि माल हराम खाने वाले की जो नमाज है वो रेत पर घर तामीर करने की मानिंद है। देखिए, अब इस रेत के इस जगह पे कोई घर तामीर करे तो इसकी बुनियाद कितनी कमजोर होगी, जरा सी हवा चलेगी और जरा सी रेत नीचे से निकली कर पूरी इमारत ढह जाएगी। तो माल हराम के साथ इबादत करने वाले की मिसाल रेत पर तामीर करना किसी घर को इसकी मानिंद करार दिया गया है, यानी इतनी नापायदार इबादत होगी कि बहुत आराम से जो है ढह जाएगी। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुमैल, हजरत कुमैल को दुरूद भेजिए, कि नमाज पढ़ते हुए कोई भी शख्स ऐसा हो कि अगर उसका लिबास सही नहीं है या उसका मकान सही नहीं है, यानी हलाल नहीं है, तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। यानी हराम लिबास या हराम जगह के साथ नमाज पढ़ना, उसकी नमाज कबूल शुमार नहीं होगी। और यह भी रिवायत के अंदर आया कि अगर कोई शख्स 10 दिरहम से कोई लिबास खरीदे और उसमें से 1 दिरहम सिर्फ माले हराम हो, 9 दिरहम माले हलाल हो, तब भी खुदा उसकी उस इबादत को कबूल नहीं करेगा। तो इंसान को कितना अपने उसके अंदर ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज ना हो। इतना वक्त नहीं, वरना पूरे एक लेक्चर इसकी मिसालों से हो सकता था कि अमूमन जिंदगी में कितनी ये चीजें पेश आती हैं। तो अब अगर अमूमी तौर पर भी आप देखें, कितने ऐसे लिबास हैं कि उस जिस माल से खरीदे गए हैं उस पर खोम्स वाजिबुल अदा था। कितने लिबास मसलन आप ऐसे पहनती हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहन की कमीज पहन के चली गई, भाइयों में भी होता है एक दूसरे की बगैर इजाजत के कमीज पहन के चले गए और उसी के अंदर मसलन नमाज पढ़ रहे हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं लोगों के साथ, इसमें अगरचे अख्तलाफ मुज्तहिदीन है लेकिन आका खुई के जमाने में ये चीज हुई थी कि ऐसे लिबास से एहराम का लिबास खरीद ऐसे माल से एहराम का लिबास खरीदा गया था जिस पर खुम्स वाजिबुल अदा था। अब उसको बाद में जाकर पता चला कि मैंने खुम्स निकाले बगैर उस लिबास से, ऐसे माल से, बल्कि ऐने माल से वो चीज खरीदी गई थी। तो आका खुई का मसला ये था कि उस आगा खोई से पूछा भी गया कि मैं उससे ज्यादा खुम्स निकाल देता हूं, अब मुझे पता ही नहीं था यह मसला। आगा खोई ने कहा इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके अगले साल दोबारा हज पर जाओ। तो मसाइले फिका के लिहाज से भी और एक लिहाज से माले हराम उसके अंदर आ गया था, तो इबादतें इस तरह से नामकबूल भी हो जाती हैं। तो इसी तरह से अमवाल की जो दो एक मिसालें दे देता हूं, जैसे आमतौर पर बैंकों में या ऐसी स्कीमों के अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा होता है जिसके अंदर गरीब का एक हिस्सा भी निकालना पड़ता है, वो अलग अलग कुछ है कि गवर्नमेंट के जो स्कीमें हैं उसके अंदर अगर पैसा रखा हुआ है किसी ने, तो आगा सिस्तानी के फतवे में उसमें मुनाफे का 50% गरीब को देना होता है। वो आपकी गर्दन पे अगर मौजूद है और आपने इस माल को इस्तेमाल कर लिया और उसी से कपड़े मसलन खरीद लिए, तो उस माल का इस्तेमाल ही हराम था। आप सोचिए कि ऐसी नमाजों का क्या बनेगा। मकान जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, घरों में मसलन वालिद इंतकाल कर गए, मीरास तकसीम होनी चाहिए थी, जो अफराद पहले से रह रहे थे वही कब्जा करके उसके ऊपर बैठ गए। अब इनकी ना दूसरे वरासा राजी नहीं है, ठीक है बाज़ औक़ात वो बोल नहीं पाते हैं, शर्मिंदगी की वजह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहरहाल एक हक है उनका, दिल में महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो अफराद कब्जा करके बैठे हैं वो सोचते हैं कि भाई ये तो कोई बोल नहीं रहा तो ठीक है हम ऐसे ही रहते रहे, नहीं। तो अब उनकी नमाजों का बड़ा मसला वहां पर हो सकता है, या तो मुसालियत उन लोगों से करें या उनका उनका हक दें वगैरह। इसी तरीके से वरासा के में से अगर कोई नाबालिग है तो चाहे वरासा बालिग वरासा इजाजत भी क्यों ना दे दें, नाबालिग अगर उसमें मौजूद है उसकी तो इजाजत की भी हैसियत नहीं है। आप मुज्तहिद के पास जाएं और वगैरह वगैरह बहुत सारे उसके प्रोसीजर हैं किस तरीके से आप उसको अंजाम देंगे मसले को। तो कितने ही माले हराम उस मकान उस जगह और उस लिबास के अंदर आ जाते हैं, जिसमें और मिसालें बनाएं तो कितनी चीजें बनेंगी कि जिससे उसकी नमाजें मुतासिर और कबूलियत के मियार तक पहुंचने से रह सकती। रोजे फितरे में हम देखते हैं कि लोग यही करते हैं कि एक एक साल बाद, 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद तक फितरा जो है पूछ रहे होते हैं फितरा कहां ले जाकर दें, जबकि फितरा रोजे की कबूलियत का बाइस है, उसका खास वक्त है उस इबादत का। कि अगर किसी को ईद की नमाज पढ़नी है तो ईद की नमाज पढ़ने से पहले तक फितरा दे दे, शब ईद ही वाजिब हो जाता है, और अगर ईद की नमाज नहीं पढ़नी तो जोहर ज्यादा से ज्यादा जोहर की नमाज तक ताखिर कर सकता है। इससे ज्यादा ताखिर करना हराम है, लेकिन वो 6 महीने 8 महीने एक एक साल बाद तक फितरा अपने पास रखे बैठे हैं और जो है वो लाकर नहीं देते, तो इससे क्या है रोजा कबूलियत के मियार तक पहुंचने से रह गया होगा, क्योंकि ज़कात फितरा अदा करना रोजे की कबूलियत का सबब बनता है। तो ये लोग माली इस तरह से गड़बड़ करते हैं और इसके अंदर मालियात के अंदर बेअतदालियों से काम लेते हैं जिससे उनकी इबादत कबूलियत के दर्जे तक पहुंचने से रह जाती। अच्छा अब और उसके अंदर एक फितरे के अंदर एक गड़बड़ और भी है। गड़बड़ से मुरादी की रिवायत में ये आया है कि अगर किसी शख्स का फितरा ना निकाला जाए तो इस बात का इम्कान होता है कि इसे जल्द मौत आ जाएगी। एक खौफ तक ताकि ये इस वजह से डाला गया कि ताकि इंसान उसकी तरफ मुतवज्जे हो और उसको फौरी तौर पर फितरे को निकाले। अच्छा अब दुआएं कबूलियत से रह जाती हैं अगर माले हराम अब इतना वक्त नहीं, सोचा तेज रफ्तारी के साथ जाऊंगा, दुआएं कबूलियत के मियार तक पहुंचने से रह जाती। और जो इस तरह से माल हराम कमाता है उसको जिल्लत और फकर का भी पेश आ जाता है मसला, कि वो गरीब हो जाएगा, मालियात के अंदर उसने इस बात का ख्याल नहीं किया। तो इस तरह की चीजें होंगी कि अगर मालदार भी है तो फकर की तरफ चला जाए। कितने लोग हैं मुकदमात के अंदर फंस जाते हैं, क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा है उन्होंने, तो अमीर थे अब गरीब हो गए। इसी तरीके से बहुत सारी रिवायतों के अंदर भी आया है कि इबादत के 10 अज्जाएं जिसमें से 9 तलब हलाल में करार दिए गए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि और इसका एक तशखीस का मियार भी है कि हमारी जिंदगियों में कहीं माल हराम तो नहीं आया, तो ये भी हमारे छठे इमाम ने एक तरीका बताया कि हम कैसे पहचानेंगे। कि अगर तुम किसी शख्स को देखो कि अपना माल इताअत खुदा के अंदर खर्च करता हुआ नजर आ रहा है, तो जान लो कि इसके पास जो माल है वो हलाल तरीके से कमाया गया है। और अगर वो अपने माल को मासियत खुदा में अल्लाह की नाफरमानी के अंदर खर्च करता हुआ नजर आ रहा है, तो समझ जाओ कि इसके माल में हराम की आमेजिश हो गई। यानी इसका एक मियार है, वाकई वो इसराफ में खर्च करता नजर आ रहा है, वो इस किस्म की मिक्स गैदरिंग वाली पार्टीज अरेंज करता हुआ नजर आ रहा है, वो शादियों के अंदर इस किस्म के मखलूत इज्तिमात और हराम चीजें की खरीदो फरोख्त के अंदर नजर आ रहा है, तो समझ जाओ कि इसके माल के अंदर हराम शामिल हुआ है। यानी उसकी खासियत ये होगी कि उससे फिर हराम ही का काम करवाएगी, और जो हलाल में खर्च करता हुआ नजर आए, तामीर मस्जिद में पैसा खर्च कर रहा है, गरीबों की इमदाद में पैसा खर्च कर रहा है, तो समझ जाए कि उसके माल में हलाल, क्योंकि वो माल हलाल है उसका। तो आम तौर पर ये देखने में आता है माशरे के अंदर, तो इसका भी एक मियार उस लिहाज से बताया गया। और इन सबके असरात भी हैं कि वाकईतन लोग जो परेशान है कि जनाब हमारे जो औलादें खराब हुई चली जा रही हैं, बिगड़ी चली जा रही हैं, उसकी एक वजह यही कि आपने उनका लुकमा हराम का असर उन औलादों के अंदर आ रहा है, वो जो इस किस्म की औलादें जो हैं वो नजर आ रही। अच्छा, इसकी बहुत सारी मिसालें, मसलन माल हराल, एक तो ये कि मुलाजमत तो कारोबार का, उसके अंदर भी मसलन दाढ़ी मोड़ने वाला अगर कोई काम कर रहा है, उसकी जो वो इनकम आ रही है वो भी हराम के अंदर जो है वो शुमार होती। और एक और ये भी है इसके अंदर कि अगर कोई शख्स हराम कमाई करता है तो गोया वो अपने पैमाने विलायत को पता कर देता है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो शख्स हमारा मोहिब नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है कि जो कि हराम खाता हो। यानी अगर वो एक चीज कर रहा है तो गोया इमाम से अपने पैमाने विलायत को कता कर रहा है। और अभी आपने शुरू में सुना था कि इसकी शर्त विलायत, इसकी कबूलियत की एक बाकायदा एक शर्त है, नमाजों की कबूलियत की, आमाल की कबूलियत की। तो गोया अमीरुल मोमिनीन से भी आपने अपने ताल्लुक को काट लिया है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो भी हराम खाता है वो हमारा दोस्त और मोहिब ही नहीं है। उन्होंने अपना ताल्लुक खत्म कर लिया, तो सोचिए कि पैमाने विलायत कता हो गया। पैमाने विलायत के कता होने के मायने फिर ये होंगे कि आपकी नमाज कबूलियत से रह जाएगी। अच्छा, इसी तरह से जो खुम्स और ज़कात नहीं देते उनकी भी नमाज कबूल नहीं। यानी ज़कात जिन मानों में अक्सर जगहों पर कुरान के अंदर आए हैं, वहां से मुराद यानी इन्फाक भी है, मुस्तहब चीजें भी हैं, और माली वाजिबात के मानों में भी आया। ज़कात से मुराद फकत वो खास निसाब वाली ज़कात हर जगह मुराद नहीं, बाज जगह मुराद भी है, बल्कि ज्यादातर जो आयत आई है इस मुतालिक वो सदक़े के लिए आई। यानी जहां ज़कात वाजिब की बात हुई है कुरान ने उसको सदक़ा कहा है। तो बहरहाल हुम्स और ज़कात दोनों ये माली वाजिबात में आते हैं, और बाकायदा रिवायत के अंदर तो ये बात भी आई है कि पैगंबर इस्लाम जब एक दफा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे तो वहां कुछ लोगों को जकात ना देने की वजह से मस्जिद से बाहर निकाला था, उसके बाद वहां पर नमाज जमात कायम की थी। और अभी आपने सुना कि बहरहाल जकात का मफहूम जरा वसी है, और इसके अंदर मुस्तहब चीजें भी आ जाती हैं, और बाज़ोकात जकात के अंदर माली वाजिबात भी मुराद होती हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद जिस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है वह हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना। अगर हकूक और लिबात पूरे नहीं हो रहे हैं, घर वालों के हकूक पूरे नहीं हो रहे हैं, रिश्तेदारों के हकूक पूरे नहीं हो रहे हैं, तो भी नमाजों की कबूलियत उससे रह जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई शख्स लापरवाह है, गरीबों और महरूमों से उसने बेतवज्जोही की हुई है, तो यह भी सबब बनती है कि इसकी भी नमाजें कबूल ना हो। अच्छा, किसी शख्स का भी उसकी गर्दन पर कोई हक ना हो, ये बाकायदा कितनी किताबें उद्दतुद्दाई के अंदर भी ये चीज है अगर बंदों का हक गर्दन के ऊपर मौजूद है और वो शख्स नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो परवरदिगार फरमाता है कि मैं उस वक्त तक उस पर लानत करता रहता हूं जब तक कि वो साहिब हक तक उसका हक वापस ना पहुंचा दे। यानी नमाज के लिए खड़ा हो गया है वो, आकर नमाजें पढ़ रहा है पाबंदी से, लेकिन क्या है, लोगों के कर्जे लेकर वापस नहीं कर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार आकर दुआएं पूछते हैं कि जनाब बताइए अपना पैसा किसी शख्स से कैसे वापस निकलवाया जाए, और आइंदा के लिए तौबा कर लेते हैं किसी को। ये शख्स सबब बनता है इस बात का कि नेकी आगे फैले भी नहीं, लोग किसी को फिर कर्जे नहीं देते, लोगों के अमवाल रख के बैठ गए, किसी चीजें आप किसी से आपने मांग ली, किताब आप मांग ली वापिस ही नहीं कर रही है, कोई चीज लेकर आई वापिस नहीं कर रही है, वो दूसरा शर्मा हुजूरी के अंदर मसलन बैठा हुआ है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। साहिब परवरदिगार फरमाता है कि जब तक के साहिब हक तक उसका हक ना पहुंच जाए तब तक मैं उस पर लानत करता रहता हूं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि लोग बेचारे मालूम कर देंगे, बताइए कि हम क्या करें, अपना पैसा कैसे निकलवाएं, तो फिर उनको अमलियात बताने पड़ते हैं और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, इसी तरह से वो अफराद के जो लोगों के इज्तिमाई और इक्तसादी मसाइल से लापरवाह हैं, इनकी भी इबादतें कबूल नहीं होती, उनकी भी नमाज और इबादतियां उनको वो नफा नहीं पहुंच पाता। भाई हमारा तो अच्छा गुजारा हो रहा है, मसलन अच्छे खाते पीते अल्लाह ने मसलन जो है वो दिया हुआ है हमें, दूसरे परेशान होते हैं, होते रहें, नहीं, उनकी कोमक करनी है, आगे बढ़ना है, वरना आपकी अपनी इबादत बेकार हो जाएंगी। ऐसा मोमिनीन के इज्तिमाई और इक्तसादी उमूर से लापरवाह अशखास जो होते हैं, जो बस अपने अंदर मगन हैं, उनका अपना अच्छा गुजर औकात हो रही है, वो अपने अच्छा वेल ऑफ लोग हैं, लोगों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, इनकी भी नमाजें कबूल नहीं होती। और इसी तरीके से बहुत सारे उमूर ऐसे हैं, नहजुल बलागा में भी अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मैंने आपके जद पैगंबर इस्लाम से यह बात सुनी है कि लोगों के दरमियान सुलह और सफाई करना चंद बरस के नमाज और रोजे से ज्यादा अफजल है। लोग कहते हैं ना कि भाई हम लाताल्लुक बनकर रहते हैं और दूसरों के झगड़ों में कौन अपनी टांग अड़ाए, तो नहीं, अगर आपको नमाजें कबूल करवानी है अपनी तो उनके झगड़ों में टांग अड़ानी पड़ेगी, यानी पॉजिटिवली उनके दरमियान सुलह कराएं, मामला को खराबी तक पहुंचने से अपने बचाएं, ताकि आपकी भी नमाजें और आमाल को कबूल किया जा सके। तो अच्छा, अब देखिए माली मुआवनत के चाहे उसमें माली मुआवनत हो, पुराने जमानों में आइमा जो थे और पैगंबर जो थे उनका तरीकाकार यही था कि वो आम गरीब लोगों की सतह पे रहते थे। अब लोग हैं कि वो वेल ऑफ हो गए हैं और अपने अच्छे खाते कमाते हैं, अपने अच्छे लिबास मकानात उसके अंदर रह रहे होते हैं, तो गरीबों की तरफ से सरफे नजर करते हैं, लेकिन वो तो अपने आप को रखते भी उसी लेवल पे थे जैसे कि हमारे आजकल के महाराजे। अगर सिस्तानी जिस मकान के अंदर रहते हैं आजकल 70 से इसी जगह पर है, और ये मकान भी उनका अपना नहीं, मुश्किल से 70 मीटर के बराबर वो मकान है, किराए का मकान है। आज भी यानी मर्जे वक्त इसके पास इतना मालियात पूरी दुनिया से आते हैं, अपने लिए एक घर तक नहीं खरीदा, क्योंकि वही वाली चीज के कमतर लोगों की सतह तक जो है वो रहना है। और वो अबा जो अभी आजकल भी पहने होते हैं, ये तो पुरानी तस्वीर मैंने लगाई, ये देखिए इसके अंदर भी जो अबा है, ये 20 साल पहले आगा सिस्तानी ने एक अबा ली थी जो आज तक चली आ रही है उनके पास 20 साल से, और कोई नई अबा उसके बाद से अब तक नहीं ली। तो बहरहाल एक तो ये है ना कि यानी दूसरों का भी ख्याल रखा जाए, आपसे तो ये जाहिर है कि तकाजा नहीं हो रहा है कि इस तरह से रहा जाए, अपने हैसियत के मुताबिक इंसान अच्छे लिबास और घर के अंदर रह सकता है, लेकिन सिर्फ एक एहसास दिलाने के लिए कि दीगर भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो आपकी सतह से काफी कम है, उनका भी ख्याल रखना है। और यही रहबर मौजम और दीगर हमारे जो उलमा के अक्सर जो उलमा कौम और नजफ से आते हैं, उलमा के मुतालिक जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो बताते हैं हाँ वाकई इसी तरह से बहुत मामूली से लिबास और उसके अंदर खाना भी उनका इंतहाई मामूली होता है, इसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो खास तौर पर कबूलियत नमाज में रुकावट बनने वाला जो गुना है उनके अंदर एक सरे फहरिस्त एक गुना है, गीबत का गुना। ये अगर कोई शख्स गीबतें भी गीबतें रोजाना करता चला जा रहा है तो अलामत अदम कबूलियत नमाज व अमाल है, इसका मतलब है ना उसके अमाल कबूल हो रहे हैं ना उसकी नमाजें कबूल हो रही। क्योंकि रिवायत में पैगंबर ने फरमाया कि वो गीबत करने वाले शख्स की 40 रोज तक नमाज और रोजा वगैरह कबूल नहीं होता, मगर ये कि अहले गीबत उससे राजी हो जाए, यानी वो माफ कर दें। और बाकायदा एक रिवायत है जो आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी है, मौजूद है। रिवायत तो काफी बड़ी है कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने अपने एक सहाबी मास से एक तवील हदीस बयान की और पैगंबर ने मास से फरमाया था, ए मास, आज तक इस हदीस को किसी नबी ने भी अपनी उम्मत तक मुंतकिल नहीं किया, यानी सिर्फ पैगंबर के अलावा किसी ने मुंतकिल नहीं किया। और फरमाया, मास, अगर तुम इस हदीस को हिफ्ज कर लोगे तो सारी जिंदगी इससे नफा उठाओगे, और हिफ्ज नहीं करोगे तो तुम पर खुदा की हुज्जत तमाम हो जाएगी। वो ये है कि खुदा ने आसमानों की खिलकत से पहले 7 फरिश्तों को खल्क किया है। देखिए पैगंबर फरमा रहे, फरिश्ते उनके आमाल लिखते हैं और जब आमाल को लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं तो आसमानों पर मौजूद फरिश्ते उनके आमाल को लेकर पाको साफ और शफाफ बनाते हैं, यानी जो कमी होती है उसको पूरा वगैरह करते हैं। लेकिन आसमानों पर मौजूद एक फरिश्ता कहता है कि मैं गीबत जांचने का फरिश्ता हूं। गीबत का फरिश्ता एक अलग से आसमानों पर है, वो उसके तमाम, और कहता है वो फरिश्ता कि इस शख्स के जो तमाम नेक अमाल तुम लेकर आए हो जिसमें गीबत भी शामिल है, इस शख्स के मुंह पर इसके तमाम अमाल जाकर दे मारो, क्योंकि ये गीबत करता है, मैं इसका कोई अमल आगे पहुंचने नहीं दूंगा क्योंकि इसका हुक्म मुझे मेरे परवरदिगार ने दिया है। और बहुत तवील हदीस है जिसमें और भी बहुत सारे गुनाहों का तस्करा है, लेकिन क्योंकि हमारे मौजू से मुतालिक इतना ही पार्ट था तो फिर पैगंबर ने फरमाया, माज, अपने भाइयों की गीबत से परहेज करो, लोगों में इख्तलाफ पैदा ना करो। देखिए इंसान जब गीबतें करता है तो लोगों में झगड़ा, इख्तलाफ, ये सब चीजें पैदा होती हैं, लोगों में इख्तलाफ पैदा ना करो वरना जहन्नुम के कुत्ते तुम्हें पाश पाश कर देंगे, पैगंबर ने फरमाया। और तुम्हें पता है कि खुदा जो फरमाता है, वन नाशताते नश्ता, इससे मुराद जहन्नुम के वो कुत्ते हैं जो गोश्त और हड्डियों को भी खा जाते हैं। और रिवायत में मिलता है कि इसके बाद माज ने कभी इतनी आयात कुरानी की भी तिलावत नहीं की जितनी इस हदीस की तिलावत माज करते थे। तवील हदीस तवील है, आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पूरी हदीस नकल की है, जिसका अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पर पढ़ने का यहां पर मौका नहीं है क्योंकि गीबत से रिलेटेड जो बात थी कि आमाले कबूलियत, सिर्फ वो टुकड़ा मैंने इसके अंदर से पेश किया है। तो आपने देखा कि पैगंबर फरमाते हैं आज तक किसी पैगंबर ने भी हदीस लोगों तक मुंतकिल नहीं की, लेकिन सिर्फ पैगंबर ने की, और कहा इसको अगर तुमने हिफ्ज कर लिया तो फायदा उठाओगे, हिफ्ज नहीं किया इस बात को तो अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, वह आखरत में गोया शिकायत ना करना कि मुझे पता नहीं था। और कितने अजाबों से भी पैगंबर ने डराया, उसके अमाल को चेहरे पर दे मारो जाके जिस आंजीना अमाल के अंदर गीबतें मौजूद, तो बताइए हमारी नमाजों का फिर क्या बनेगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि नमाज, सारी मेहनतें जाया हुई चली जा रही हैं, सारे अमाल हमारे बेकार और जाया हो रहे हैं, तो कितना इस बात का ख्याल रखने की जरूरत पेश आती है। बात इस पर कितनी मजीद हो सकती है, लेकिन गीबत वाले बात को यहां पर रोकते हैं, ये अलग से आप शुमार कीजिए कि कितना अहम तरीन मसला है, इसको अपनी जिंदगियों से इस गुनाह को खत्म करें। उसके बाद जो जिनसे नमाज कबूलियत से रह जाती है या उस परसेंटेज के मुताबिक कबूल नहीं होती जिस परसेंटेज पे कबूल होनी चाहिए थी, मैंने कहा था ना कि फीसद के एतबार से भी कबूल होती है, वो है कि जितना मकरूहात नमाज के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही उसका सवाब कम होता जाएगा, उतनी ही कबूलियत कम होती चली जाएगी। मसलन किसी भी जानदार की तस्वीर अगर कमरे में मौजूद है, हद तक कि चाहे वो उलमा की तस्वीर क्यों ना हो, इमाम खुमैनी की तस्वीर, उसमें तो लोग कहते हैं, समझते हैं कि शायद इसके अंदर कराहियत नहीं, अक्सर मसाजिद के अंदर भी मराजे और उलमा की तस्वीरें लगी हुई। तो बहरहाल आगा सिस्तानी तो कहते हैं अतराफ में भी कहीं पर भी अगर तस्वीर लगी हो जानदार की, और खासतौर पर उसमें जिसमें चेहरा हो उसका मौजूद हो, तो वहां पर नमाज पढ़ना मकरूह है, सवाब नमाज कम हो जाता है। और बहुत से उलमा ये कहते हैं कि नहीं, सामने होनी चाहिए, पीछे या अतराफ में कहीं है तो फिर वो मकरूह नहीं है, लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि नहीं, अतराफ में भी कहीं पर भी मौजूद है। इसी तस्वीर के अलावा यानी जितने भी आप मकरूहात को कम से कम करेंगी उतनी सवाब नमाज बढ़ेगा, उतनी कबूलियत बढ़ेगी। और तस्वीर के साथ साथ ये हुक्म, एक हुक्म मुजस्समे का भी। अच्छा, मुजस्मा हम समझते हैं कि जिस तरह जानदार के मुजस्मे मिल रहे होते हैं बाहर, वो वाला मुराद नहीं, ये भी मुजस्मे में आता है। मसलन ये जो स्टफ टॉयज जो होते हैं बच्चों के, बिल्ली बनी हुई है, कुत्ता बना हुआ है, और जिस तरह के जानवर जानदार रखे हुए हैं सामने कमरे के अंदर, वहां नमाज पढ़ लें, सवाब नमाज कम हो जाएगा। या तो उनपे कोई चीज ढक दें, तस्वीर को ढक दें वगैरह। इसी तरह से टीवी अगर चल रहा है और उसमें इंसानी शक्लें उभर रही हैं और वहीं पे आप नमाज पढ़नी, सवाब नमाज कम हो जाएगा, जानदार की तस्वीर के हुक्म में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और आईना मौजूद है और आईने में आपकी आपका अक्स उभर रहा है, या आपका अक्स ना भी उभर रहा हो लेकिन आप जिस तरह से हैं उस आईने में किसी भी जानदार और चीज का अक्स उभर रहा है, मसलन कोई और कमरे में मौजूद है और उसका इस तरह से आईना रखा हुआ है कि उसका अक्स उसके अंदर आ रहा है, गोया तस्वीर का हुक्म हो जाएगा, सवाब नमाज कम हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का, बहुत सारी चीजों का ख्याल, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है वरना और इसके अंदर तफसील में सारे मकरूहात नमाज का तस्करा करते और बात होती, लेकिन पूरा एक दर्स हो जाता सिर्फ उस पर। तो आप खुद देखें, मुतालिया करें, तौजील मसाइल पढ़ें कि मकरूहात नमाज में और कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन एक चीज का और इजाफा कर दें, जैसे कि मोहज्जतुल बैजा जो मुल्ला मोहसिन फैज काशानी की किताब है, उसमें हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिसमें इमाम ने फरमाया कि हाकिन और हाकिब की भी नमाज कबूल नहीं होती, यानी वो अफराद जो अपने फजलात को रोक कर नमाज अदा कर रहे होते हैं, इनकी भी कबूलियत का वो मियार नहीं होता। इंसान मुस्तहबात में से कि पहले इन हवाइज जरूरिया से फारिग हो जाए और उसके बाद आकर नमाज पढ़े। अच्छा, इसी तरह से एक चीज और है, वो है बद इखलाकी। असूल काफी में भी है कि बद इखलाकी अमल को ऐसे खराब कर देती है जिस तरह सिरका शहद को फासिद कर देता है। अगर कोई शख्स बद इखलाक है, एक तो बद इखलाक वो है कि अच्छे तरीके से लोगों से पेश नहीं आना, चले अभी हम उसी पर बात कर लेंगे, वरना बद इखलाकी का इखलाकी मफहूम बहुत वसी है। सर वसीम इमाम ने कितनी दफा क्लासों में आपको बयान किया है कि बद इखलाकी मसलन 10 चीजें इखलाक के अंदर शामिल हैं, या इस तरह से और भी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह सिरका शहद को फासिद कर देता है, इस तरह से बद इखलाकी अमाल को फासिद करती। खास तौर पर इस मसले में शोहर और बीवी का एक दूसरे को अजियत देना, यह बद इखलाकी की एक किस्म है। और साद इब्ने मुआज, जिनका भी जो मुआज का तस्करा हो रहा था, उन्हीं के बेटे का कितना मशहूर है कि अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाते थे वो, और उसके बाद पैगंबर मौजूद थे और फिशार कब्र हो रहा था और पैगंबर ने गम का इजहार किया था कि साद पर फिशार हो रहा है क्योंकि वो अपनी जौजा के हक को अदा नहीं करते थे। इसी तरीके से शौहर का बीवी को अजियत देना और बीवी का शौहर को अजियत देना। तो और बाकायदा रिवायतों में भी पैगंबर ने बात फरमाई कि जो औरत अपने शौहर को अजियत दे, ख्वाह वो दिन भर तमाम उम्र दिन में रोजा रखे और तमाम रात इबादत के अंदर बसर करे, नमाजें पढ़ती रहे, और गुलामों को आजाद करे और राह खुदा में इन्फाक करे, तब भी खुदा उसकी ना नमाजों को कबूल करेगा और ना दीगर अमाल को। और फिर फरमाया कि पैगंबर ने फरमाया कि यही अजाब उस शख्स के लिए भी है जो अपनी बीवी को तकलीफ और अजियत देता है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवी के लिए बात कही गई, शौहर के लिए नहीं, नहीं, दोनों एक दूसरे को अगर इस अंदाज से अजियत किसी भी तरीके से पहुंचा रहे हैं। और कितनी चीजें इस तरह से आती, बाकायदा तशद्दुद भी करते हैं, कितने खवातीन के आते हैं, लेटर्स भी आते हैं और सवालात पूछती हैं, पूछते देखे गए हैं। 35-35 साल से मसलन शौहर है, जुल्म कर रहा है, मारपीट करता है, गालम गलोच करता है कोई तरीके, इसी तरीके से बीवियों के हवाले से बहुत सारी इस तरह की शिकायत आती। और वैसे क्या है, मालूम चलता है जब तहकीक करें तो हाँ, नमाजी भी है, इमाम बारगाह भी जाता है, मजलिसे भी सुनता है, दीगर इन्फाक भी करता है, तो वो इस हदीस के जुमरे के अंदर शामिल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, हम तो इबादत अंजाम दे रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया सारी जिंदगी ऐसा करता करती रहे वो, तब भी उसकी कोई अमल इस लिहाज से कबूल नहीं होगा। तो अब देखिए, जो भी खवातीन फरिश्ता सिफत शौहर चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि घर को जन्नत बनाए, क्योंकि फरिश्ते दोजखों में नहीं रहते। और इसी तरीके से वो मर्द हजरात जो चाहते हैं कि उनकी बीवियां हूरों के तौर पर उनको मिलें, पहले वो खुद को इंसान बनाएं, क्योंकि शयातीन को भी हूरें नहीं मिला करती। तो ये खासियत, इस लिहाज से ये बात जरूरी है कि इंसान, शौहर हो या बीवी, दोनों अपनी इन चीज़ों को पहचाने, एक दूसरे को अजियत पहुंचाने से बाज रहें। बद अखलाकी की बदतरीन किस्म है, जो कि नमाजों और रोजों को कबूलियत के मियार तक पहुंचने से रोक देती। अभी इसके अंदर मेरे लिहाज से आज मुझे इसको, इस मौजू को खत्म करना है, लेकिन आधा मौजू फिर रह गया जो कि मुझे अगली नशिस्त के अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो गुफ्तगु है और नशिस्त है वो अल्लामा तकी महदवी साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो अगला लेक्चर उनका होगा, तो उनका वक्त ऐसा ना हो कि मैं ले लूँ, तो इसको यहाँ पर रोकते हैं। लेकिन बातें अभी बहुत सारी बाकी, समझें आधी बातें अभी बाकी रह गई हैं कि जो नमाज को कबूलियत के मियार तक पहुँचने से रोक देती हैं जो चीज़ें, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में पूरी हो जाएंगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिर।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله